अमित ने उस छिपकली रज्जू की राख अपने हाथ में लेकर कुछ मंत्र पढ़े। देखते ही देखते पहले उसके मंत्र से तीन छिपकलियां बनी और फिर देखते ही देखते एक बड़ा ही खतरनाक बिच्छू बन गया, जो अब अमित का नया हथियार था। अमित ने उसे अमन के पास भेजकर तारा को अपने महल लाने का हुक्म दिया। बिच्छू अमित से विदा लेकर इंसानी रूप धारण करके अमन के घर की ओर निकल गया। बिच्छू के जाने के बाद अमित को वो पेड़ नजर आया जिसके पीछे उसने लकड़हारे की बेटी के साथ कूकाइन किया था। वहां जाकर वो सब कुछ याद करके पेड़ से कहने लगा, हे पेड़, तू बहुत अच्छा है जो मेरे इतने काम आया है। बहुत मजा आया तेरे इस पेड़ के पीछे। और भी न जाने क्या क्या अमित की उल्टी सीधी बातें सुनकर पेड़ की आंखों से आंसू आने लगे। उस पेड़ को पता था कि प्रेमा उसी के ऊपर रहती है और उसे मारने का ख्वाब देखती है। और अब जब अमित उसी पेड़ के नीचे खड़ा होकर उल्टी सीधी बातें बोल रहा था, जिसे सुनकर उसे बहुत गुस्सा आने लगा। उसके बाद उस पेड़ ने अपनी एक बड़ी सी टहनी तोड़कर अमित के सिर पर मार दी। अमित संभल नहीं पाया और नीचे गिर गया। प्रेमा ये देखकर हंसी और सोचने लगी कि आज तक केवल सुना ही सुना था कि पेड़ों में भी जान होती है, और आज उसने देख भी लिया। लेकिन उसकी हंसी की आवाज अमित के कानों में सुनाई दे रही थी। हंसी की आवाज सुनकर अमित को लज्जा आई और गुस्से के मारे अमित का बड़ा ही बुरा हाल था। वो तेज चिल्लाया, कौन है यहाँ? किसने काली शक्तियों के मालिक अमित से दुश्मनी मोल लेना चाही है? बोलो, कौन हो तुम? तब प्रेमा ने सोचा, जब तक मैं इस घर में हूँ ये मुझे नहीं देख सकता, लेकिन तब तक मैं इसे अपनी बातों के जाल में जरूर फंसा सकती हूँ। ये सोचकर प्रेमा के दिमाग में एक विचार आया। प्रेमा ने कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम वन की देवी से पूछते हो कि वो कौन है? दुष्ट पापी, हम तुझे इस अपराध के लिए अभी एक पल में भस्म कर सकते हैं। ये सुनते ही अमित थरथर कांपने लगा, क्योंकि वन देवी के बारे में उसने आज तक केवल सुना ही सुना था, और आज वन देवी का इस तरह से बोलना उसे अंदर तक कंपा गया था। अमित सोचने लगा कि भले ही वो काली शक्तियों का मालिक ही क्यों ना हो, लेकिन वन देवी से तो वो भी नहीं जीत सकता था, क्योंकि उसने अपने सभी पूर्वजों से सुन रखा था कि वन देवी कितनी ज्यादा शक्तिशाली होती है। पेड़ प्रेमा की बात सुनकर हंसने लगे। तभी पेड़ ने अपनी एक और टहनी उस दुष्ट के सिर पर मार दी, जिससे वो एक बार फिर गिर पड़ा। तब वो अपने दोनों हाथ जोड़ने लगा, वन देवी, आप कृपा करके मुझे क्षमा करें, आइंदा मैं यहाँ इस वन के किसी भी पेड़ पौधे को नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। ये कहकर अमित वहां से भाग निकला। अमित के जाते ही प्रेमा जोर जोर से हंसने लगी और पेड़ की एक टहनी को गले लगाकर उसका शुक्रिया अदा करने लगी और बोली, आज तक अपने पूर्वजों से मैं ये सुनती हुई तो आई थी कि सभी पेड़ पौधों में भी जान होती है, और आज आपको बोलता हुआ देखकर मुझे यकीन आ गया है। सच में मैं तो धन्य हो गई हूँ। ऐसा कहकर प्रेमा एक बार फिर उस पेड़ की टहनी पर झूल गई और पेड़ ने भी खुश होकर उसके ऊपर ढेर सारे फल फूलों की बरसात कर दी। अमित सीधा अपने महल पहुँच गया था। उसने देखा कि आज उसके महल का सारा नक्शा बदला हुआ लग रहा था। हर जगह एक जैसे कपड़े पहने हुए पहरेदार खड़े थे और अमित को देखते ही वे सब झुककर सलाम करने लगे। अमित को आज वाकई बहुत अच्छा लगा। जैसे ही अमित अंदर गया, उसने देखा कि मल्लिका एकदम काली साड़ी, काली चूड़ियां और बड़ी सी बिंदी लगाए बड़ी ही खूबसूरत लग रही थी। अमित ने जैसे ही मल्लिका को देखा, वो सामान्य भाषा में कहा जाए तो मल्लिका एकदम हिंदी सीरियल की विलन कोमोलिका जैसे दिख रही थी। अमित जैसे ही मल्लिका को देखा, वो एकदम उसके करीब चला गया और हल्की हल्की नजर आती उसकी गोरी कमर में हाथ डालकर उसे अपने सीने से लगाते हुए बोला, आज वाकई तुम्हारे इस अंदाज से हमें राजाओं वाला अनुभव हुआ। हम इस काली दुनिया के राजा हैं और तुम हमारी रानी। ऐसा कहकर अमित मल्लिका के होंठों पर टूट पड़ा और मल्लिका भी उसका भली भांति साथ देने लगी, और जल्दी ही वे दोनों अपने उस गहरे लाल रंग के कमरे में पहुंच गए और जल्दी ही उन दोनों की आवाजें पूरे महल में गूंजने लगी। वहीं दूसरी ओर पूरे दो घंटे के बाद तारापरी की आंख खुली। उसने देखा कि मान उसके बिल्कुल बराबर में सोया हुआ था। तारापरी उसे प्यार से देखने लगी, लेकिन जैसे ही उसने दूसरी ओर देखा, उसने देखा कि अमन सोया नहीं था, वो बैठकर तारापरी को ही देख रहा था। तारापरी अमन को इस तरह से जागा हुआ देखकर एक बार को डर गई और फिर बोली, आप नहीं सोए? आपने आराम क्यों नहीं किया? तब अमन ने तारापरी से कहा, मिस तारा, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। आप तो जानती हैं, आपके पिछले जन्म में भी मैं ही आपका साथी था, और वहां जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा है, और वो सब मेरे जहन में चल फिर रहा है। मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ। तब तारापरी ने कहा, अमन सर, कहिए आप क्या कहना चाहते हैं? तब अमन ने कहा, आपको याद है राधा के पिछले जन्म में उस अघोरी ने उस दुष्ट राजा को वरदान दिया था कि जब जब राधा मोहन का जन्म होगा तब तब वो राक्षस भी जन्म लेगा। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या वो राजा किसी और वेश में आपके पास पहुँच गया है? अगर ऐसा है तो आप मुझे बता दो ताकि मैं उस दुष्ट राजा को अपने हाथों से मार सकूं। तारापरी अमन की बात सुनकर हैरान रह गई और वो सोचने लगी कि वो राक्षस तो मेरी जिंदगी में कब का आ चुका है। अगर मैंने अमन सर को ये बात बता दी तो फिर परी होने का सच भी मुझे अमन सर को बताना होगा, जो मैं नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि बच्चा होने से पहले अगर मेरे परी होने का सच अमन सर या किसी और को पता चल गया तो इससे कुल देवता नाराज हो सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं कुल देवता की नाराजगी मोल नहीं ले सकती हूँ। अगर कुल देवता नाराज हो गए तो उन्हें केवल एक पल लगेगा उस राजा राक्षस को उठाने में। अगर ऐसा हुआ तो बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी। अपने सवाल पर तारा को इस तरह से चुप देखकर अमन को कुछ संदेह होने लगा और वो बोला, क्या हुआ मिस तारा, आपने जवाब नहीं दिया। अगर कुछ भी ऐसी बात है तो आप मुझे बता सकती हैं। तब तारा परी ने कहा, नहीं नहीं अमन सर, मैं ये सब नहीं जानती। और उस राजा को जो वरदान मिला वो पिछले जन्म में मिला था, जो बहुत पहले की यानी सदियों पुरानी बात थी। अब ये 21वीं सदी है, अब ये वरदान, पूर्ण जन्म या पिछला जन्म, इन सब पर भला कौन यकीन करेगा। तब अमन ने कहा, लेकिन तारा, सब कुछ अपनी आंखों से देखने के बाद भी तुम ऐसा कैसे कह सकती हो। तब तारा परी ने कहा, अमन सर प्लीज, एक तो मैं ये सोच सोच कर परेशान हूँ कि राधा के साथ वहाँ क्या हुआ होगा, उस दुष्ट राजा से वो कैसे बची होगी। क्या आपके दिमाग में ये सवाल नहीं आ रहे हैं। तब अमन ने कहा, मेरी हालत भी सेम तुम्हारे जैसी है, लेकिन मैं क्या करूँ। तुम्हारी माँ ने तो कहा था वक्त आने पर ही हमें आगे की कहानी पता चलेगी। तब राधा यानी तारा ने कहा, व्हाट यू मीन, मेरी माँ। तब अमन ने कहा, अरे मेरा मतलब है राधा के पिछले जन्म की माँ। तब तारा परी की आंखों के आगे राधा का चित्र उभर आया। तारा परी सोच रही थी कि अगर वो भी राधा के जैसे कपड़े पहन लेगी तो वो बिल्कुल राधा के जैसी ही दिखेगी। तारा परी को अचानक राधा की खूबसूरती नजर आने लगी। तारा परी को सोच में गुम देखकर अमन ने उसके सामने चुटकी बजाई और मानो तारा परी ख्वाब से बाहर आ गई हो। और अभी उन दोनों की बहस चल ही रही थी कि तभी करिश्मा जी वहां आ पहुंची। अमन और तारा परी करिश्मा जी को देखकर शंख पका गए। तब करिश्मा जी ने एक नजर तारा परी और अमन पर डाली और फिर मान की ओर देखते हुए बोली, ये सब क्या है, मैंने तुम तीनों को अलग अलग कमरे में जाने के लिए कहा था और तुम सब एक साथ क्या कर रहे हो।
तब अमन ने कहा, वो मॉम, एक्चुअली मॉम, वो तारा को डर लग रहा था तो मान और मैं उसके पास आ गए थे। और ये देखो, हमें जागना था लेकिन हमारे मान बाबू तो जाग ही नहीं पाए और यहाँ आते ही सो गए थे। तब करिश्मा जी ने कहा, लेकिन बेटा, बिना शादी के इस तरह से सात कमरे में रहना बहुत बड़ा अपशकुन है। करिश्मा जी की आवाज़ सुनकर मान की नींद भी खुल चुकी थी और वो उन लोगों की सारी बातें सुन चुका था। तभी करिश्मा जी को शगुन अपशगुन की बातें करता देख वो उठा और उसने अपने हाथों का हार करिश्मा जी के गले में डाल दिया और बोला, ये क्या मॉम, आप सुबह सुबह शगुन अपशगुन की बातों में लग रही हैं, मुझे बहुत भूख लगी है मॉम, आप प्लीज़ चलिए मुझे कुछ खिला दीजिए, उसके बाद आप शादी की तैयारियों में जुट जाओगी, फिर पता नहीं मुझे खाना मिले या ना मिले। करिश्मा जी ने अपने बेटे की बात सुनकर उसके चेहरे पर हल्का सा प्यार किया और बोली, ओ मेरे बच्चे को भूख लगी है, आजा मेरा बेटा, मैं तुझे तेरी पसंद का नाश्ता कराती हूँ। और वो मान को बाहर ले जाते जाते पलटी और तारा परी और अमन से बोली, तुम दोनों भी आ जाओ, तब तक मैं नाश्ता लगवाती हूँ। उन दोनों ने भी हाँ में सर हिला दिया। अचानक मान रुका और करिश्मा जी से बोला, मॉम आप चलिए, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। तब करिश्मा जी ने कहा, ओके बेटा आ जाओ जल्दी, कहकर चली गई। तब मान तारा परी के पास गया और बोला, वैसे मिस तारा, जो भाई का सवाल था वही सवाल मेरे मन में भी था। तारा परी उसे हैरानी से देखने लगी।